है स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, मन का दीप जला जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में रहते हुए आनंदित हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इसके साथ उन सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर हमें पत्र लिखते हैं और अपने आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं। यदि आज तक आपने पत्र नहीं लिखा है तो कृपया आप भी पत्र लिखें ताकि हम आपके साथ पत्र के माध्यम से संगति करने पाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों भजन संहिता से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने 17 और 18 अध्याय का अध्ययन किया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 19 से अपने अध्ययन को करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए जिसके द्वारा से प्रभु आज हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम सुने उसे समझ सके और अपने जीवन में ग्रहण कर सके। विशेष करके भजन संहिता से जो भी बातें हम सुनते हैं उससे हम सीख सके। आपके दास भजनकार के द्वारा से आप हमसे बोली और बातचीत कीजिए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, दुखी हैं, चिंतित और परेशान हैं। आप उनके साथ होइए, उन्हें भी शांति दीजिए। धन्यवाद पिताजी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय श्रोता मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आज्ञाओं में और मसीह में उसका अभिर्भाव। इस भजन को सृष्टि का एक महान भजन कह सकते हैं। इस भजन को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है, सृष्टि एवं व्यवस्था में यहोवा का प्रगटीकरण। परंतु मैंने इस भजन को तीन भागों में विभाजित करने का यत्न किया है, जगत की सृष्टि, आज्ञाएं और मसीह। मेरे विचार में उद्धार, मुक्ति और परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर का विशेष स्थान है और हम परमेश्वर के प्रगटीकरण को उसके सृष्टि, उसकी आज्ञाओं और मसीह में उसके अनुग्रह में उपस्थित देखेंगे। परमेश्वर ने इसे उचित समझा कि इतना ही मनुष्य पर प्रकट करे, परंतु मेरे विचार में उसने अपने विषय में हमें जानकारी देना समाप्त नहीं किया है। यह दाऊद का एक और भजन है और प्रेरित वचन भी यही कहता है। लेख में ही हम देखते हैं कि विभाजन किया हुआ है। पद 1-6 पहला भाग है जिसमें परमेश्वर के लिए मूल भाषा में एल काम में लिया गया है, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान। वह सृष्टि में सर्वशक्तिमान है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है कि आदि में एलोहिम अर्थात एल का बहुवचन ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, अर्थात एलोहिम सृजनहार परमेश्वर का नाम है। दूसरा भाग है पद 7 से आरंभ होता है। यहोवा की व्यवस्था खरी है। यहाँ उसे यहोवा कहकर संबोधित किया गया है जो 7 बार आया है, और अंत में उसे चट्टान और उद्धार करने वाला भी कहा गया है। साधारण समझ के विद्वान नामों में अंतर की व्याख्या को यह कहकर टाल देते हैं कि यह भजन 2 व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है। यदि यही साधारण समझ पंच ग्रंथ या पंच तंत्र के अध्ययन में काम में ली जाए तो यह कुछ विद्वान कहते हैं कि पंच ग्रंथ के 2 लेखक हैं, एलोहिम शब्द काम में लेने वाले और यहोवा शब्द काम में लेने वाले। यहाँ एक ही लेखक ने परमेश्वर के लिए 2 नामों के उपयोग द्वारा लिखा है। भजन बाइबल के अनेक भागों पर प्रकाश डालते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपके हृदय और जीवन को अवश्य ही आशीषित करते हैं। तो आइए देखें सृष्टि में परमेश्वर। यह प्रातःकालीन भजन है और प्रथम 6 पदों में सृष्टि के संबंध में चर्चा करता है। भजन 8 भी सृष्टि संबंधित भजन था जिसमें हमने चांद और सितारों के बारे में सुना था, परंतु वह रात का भजन था। भजन संहिता 19 को दिन का भजन कहते हैं क्योंकि इसमें सूर्य की चर्चा की गई है। तो आइए हम भजन संहिता 19 उसके 1-6 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। मेरे मित्रों, मैं आपके साथ डॉक्टर आर्नो सी गवलिन का अनुवाद बांटना चाहता हूं। उनमें मुझे बहुत विश्वास है। वे इब्रानी और जर्मनी के भजनों के विद्वानों से परिचित हैं जिन्होंने भजन पर गहन मत व्यक्त किया है। उनका अनुवाद है आकाश परमेश्वर की महिमा व्यक्त करता है और अंतरिक्ष उसकी हस्तकला की घोषणा करता है। दिन प्रतिदिन चर्चा होती है और रात प्रति रात ज्ञान प्रकाशन होता है। न भाषा न शब्द है परंतु उनकी आवाज सुनी जाती है। उनका कर्म संपूर्ण जगत में फैला है और पृथ्वी की छोर तक उनका वचन है। उनके मध्य उसने सूर्य का तंबू स्थापित किया है। सूर्य दूल्हे के समान निकलता है जैसे दूल्हा अपने कक्ष से बाहर आता है। वह एक बलवंत पुरुष की नाई आनंदित है जैसे कि दौड़ की तैयारी में हो। उसका चलना आकाश की छोर से आरंभ होता है और अंत तक पहुंचता है और उसकी गर्मी से कोई नहीं बचता। मेरे मित्रों, यह एक अद्भुत भजन है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। इसी बात को पौलुस रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 20 पद में इस प्रकार से कहता है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। आकाश मंडल परमेश्वर की बुद्धि का वर्णन करते हैं, वे उसके सामर्थ्य का वर्णन करते हैं और मेरे विचार में वे परमेश्वर की योजना और उद्देश्य का भी वर्णन करते हैं। आरंभ ही से सृष्टि मनुष्य के लिए प्रारंभिक गवाह है। मेरे मित्रों, कलीसिया की प्रत्येक विश्वास अभिव्यक्ति में, प्रेरितों के विश्वास वचन में भी सृष्टि विशिष्ट रूप से पिता परमेश्वर की कही गई है। परंतु नए नियम में जब आप देखते हैं कि सृष्टि की भी अत्युक्ति देखते हैं, तो आप पाएंगे कि यह कहना उचित नहीं कि पिता परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, क्योंकि पृथ्वी की रचना में त्रिएकत्व क्रियाशील था। सच तो यह है कि इब्रानी शब्द एलोहिम बहुवचन है, जो परमेश्वर के त्रिएकत्व को प्रकट करता है। नए नियम में कहा गया है कि प्रभु यीशु सृजन कार्य का कर्ता था और पवित्र आत्मा ने उसका परिभार्जन और नवनीकरण किया है। उत्पत्ति अध्याय 1:2 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था। प्रेरित यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा सृजा गया और उसके बिना एक भी सृजित वस्तु सृजी नहीं गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1-3। यही प्रभु यीशु मसीह है। यीशु के बारे में कुलुसियों की पत्री में कहा गया है 1:16 में, उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु सृष्टि का कर्ता था। इफिसियों को लिखे पत्र का 1 बताता है कि त्रिएकत्व के सभी सदस्य हमारे उद्धार में सहकर्मी थे। पिता परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई, पुत्र ने मूल्य चुकाया और पवित्र आत्मा उसकी रक्षा करता है। यह परमेश्वर की सृष्टि पर भी लागू होता है। पिता परमेश्वर ने योजना बनाई, पुत्र ने योजना को पूरा किया और उसका उद्धार किया, और पवित्र आत्मा आज तक इस सृष्टि पर मंडराता है। जी हाँ, यह एक रोचक बात है कि सूर्य मुख्य है और उसकी तुलना दूल्हे से की गई है जो अपने घर से निकल रहा है। यह बड़ा ही रोमांचक दृश्य है जो एक और दूल्हे का स्मरण कराता है। प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता का सूर्य है। एक दिन वह इस पृथ्वी पर महिमा में आएगा, परंतु अपने आगमन से पूर्व वह अपनी कलीसिया को इस संसार से उठा लेगा। वह चमकता हुआ भोर का सितारा है। भोर का चमकता हुआ सितारा सूर्योदय से पूर्व प्रकट होता है। यह सृष्टि का कैसा अद्भुत चित्रण है, इसके तुल्य और कुछ भी नहीं। यह अति अद्भुत भजन सृष्टि का चित्रण करता है। मेरे मित्रों, आइए हम आगे देखें कि अपनी आज्ञाओं में परमेश्वर। भजन संहिता 19:7-11 में हम पढ़ते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। यहाँ भी मैं डॉक्टर गेबलिन का अनुवाद सुनना चाहता हूँ। यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है, आत्मा को पुनर्जीवित करती है। यहोवा की गवाही निश्चित है और बुद्धिमान को विनम्र बनाती है। यहोवा का विधान उचित है, जो मन को प्रफुल्लित कर देता है। यहोवा की आज्ञाएं खरी हैं और आंखों को खोल देती हैं। यहोवा का भय धार्मिकता से पूर्ण है, सदा तक बना रहता है। यहोवा का न्याय सत्य है और न्याय सम्मत है। सोने वरन शुद्ध सोने से अधिक चाहने योग्य और शहद वरन शहद के छत्ते से अधिक मधुर है। उनके द्वारा तेरा दास सचेत किया जाता है और उनका पालन करने से महान प्रतिफल मिलता है। अब देखिए वह आज्ञाओं के बारे में क्या कहता है। 1, वे खरे हैं। व्यवस्था से हमारा उद्धार नहीं है, क्योंकि वह खरी है और हम नहीं। हम उसमें खरे नहीं उतर सकते। व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है। पौलुस ने परमेश्वर के अनुग्रह के पक्ष में व्यवस्था के लिए कहा है, रोमियो के पत्र 7 अध्याय उसके 12 से 14 पद में, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है, परंतु हमारे लिए वह मृत्यु उत्पन्न करती है, क्योंकि हमारे साथ कोई गंभीर समस्या है। व्यवस्था तो हमें इसलिए दी गई है कि हमें परमेश्वर के समक्ष पापी होने का बोध कराए या बोध हो। व्यवस्था खरी है। अब दूसरी बात देखते हैं, यहोवा के उद्देश्य सिद्ध हैं। परमेश्वर नई नैतिकता अपना ले, इस पर निर्भर न रहे। परमेश्वर मनोविज्ञान के नए विचारों का अध्ययन नहीं कर रहा है, और न ही वह न्यायाधीशों की निर्णय सुन रहा है। परमेश्वर तो पाप का दंड देगा, उसने कह दिया है कि वह ऐसा करेगा। परमेश्वर के उपदेश सिद्ध हैं, दंड आ रहा है, आज्ञाएं इसे प्रकट करती हैं। तीसरी बात, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। अब कोई कहे, कुछ आज्ञाओं को मैं पसंद नहीं करता। हो सकता है कि आपको पसंद ना हो, परंतु परमेश्वर को वे पसंद हैं, क्योंकि वे उचित हैं। उन्हें उचित कौन बनाता है? मेरा समाज शास्त्र का प्राध्यापक कहता है, कौन निर्धारित करेगा कि सही क्या है? आप कैसे जानेंगे कि सही क्या है? उस समय तो मैं इसका उत्तर नहीं जानता था, परंतु अब जानता हूँ कि परमेश्वर है जो निर्धारित करता है कि सही क्या है। यह उसका संसार है, उसी ने इसकी रचना की है, उसी नियम बनाए हैं। संभव है कि आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम अच्छा नहीं लगता है, परंतु मैं आपको परामर्श देता हूँ कि उसके साथ मूर्खता ना निभाएं, अर्थात आप 10 मंजिल से ना आगे बढ़ जाएं। परमेश्वर आपके लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं बदलेगा, वह सबके लिए है, नहीं तो क्या होगा, आप मर जाएंगे। चौथी बात, यहोवा की आज्ञा निर्मल है। निश्चय ही वे निर्मल हैं, वे आपके लिए कुछ करेंगे, आपको विनम्र बनाएंगे और आपका उत्थान करेंगे। पांचवी बात, यहोवा का भय पवित्र है। मुझे बताया गया है कि भय का यहाँ अर्थ है श्रद्धापूर्ण विश्वास। मेरी समझ में तो इसका अर्थ कुछ अधिक है, इसका अर्थ है भय। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का भय मानकर उचित ही करते हैं। मैं अपने पिता से प्रेम करता था और करता हूँ, परंतु निश्चय ही उनसे डरता था। वह मुझे लीक पर चलाते हैं, अर्थात सही रास्ते पर चलाते हैं, और अंत में मुझे समझ में आ गया कि इस कारण से मैं आज जेल में नहीं गया। मैं जानता था कि यदि मैंने कुछ भी गलत किया तो परेशानी में पड़ जाऊंगा। परमेश्वर का भय पवित्र है। परमेश्वर का भय मानना आपका शोधन है। मेरे पिता के भय ने मुझे एक अधिक अच्छा बालक बनाया, और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रभु की सेवा में हूँ। मैंने उनसे प्रेम किया और वह भी मुझसे प्रेम करते हैं। छठवीं बात, यहोवा के नियम सत्य हैं। आप जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है? पिलातुस जानना चाहता था, अतः उसने प्रभु यीशु से पूछा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 38 पद में, सत्य क्या है? जबकि सत्य प्रभु यीशु के रूप में उसके सामने ही खड़ा था। सातवीं बात, यहोवा के नियम धर्ममय हैं। वे उचित हैं। परमेश्वर जो भी करता है वह उचित है। यह एक महान गद्यांश है। हमें परमेश्वर के संपूर्ण वचन से प्रेम रखना सीखना है। मुझे अनेक पत्र प्राप्त हुए, क्योंकि लोगों का यह विचार था कि मैं 10 आज्ञाओं के पक्ष में नहीं हूँ। क्यों? मैं तो उनके विरोध में नहीं हूँ, वे अति उत्तम आज्ञाएं हैं। मैं स्वयं के विरोध में हूँ, क्योंकि मैं उनका पालन नहीं करता। यदि आप उनका पालन कर सकते हैं, तो आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि वह आपको जगह दे और आप उसके साथ बैठ जाएं, क्योंकि आपने अपने प्रयासों द्वारा उनका पालन किया है। परंतु परमेश्वर कहता है कि आप उनका पालन करने में असमर्थ हैं, और मैं परमेश्वर से सहमत हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने आप से उनका पालन नहीं कर सकता, मैं उसकी बात मानता हूँ। मुझे उसके पास पापी के रूप में ही आना होगा। मेरे मित्रों, हम आगे देखेंगे मसीह में परमेश्वर का अनुग्रह। अब हम मसीह में परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं। भजन संहिता 19 उसके 12 से 14 पद में लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? जी हाँ, ऐसा कौन है? मैं बहुत बहानेबाजी करता हूँ। मेरी पत्नी कहती है कि मैं तर्क करना सीखूं। सच तो यह है कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं बहाने बना सकता हूँ, परंतु परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि आप अपनी भूल को समझ नहीं सकते, उसकी बात माने कि आप पापी हैं। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। गुप्त पाप आज अनेकों की समस्या है। वे स्वयं से ही गुप्त रखते हैं, वे सोचते हैं कि वे पापी नहीं है। तू अपने दास को ढिठाई के पाप से भी बचाए रख और मैं बड़े पापों से बचा रहूंगा। आप जानते हैं कि बड़ा पाप क्या है? प्रभु यीशु मसीह का परित्याग, वह प्रभु जो इस भजन में प्रकट किया गया है। अब भजनकार को सुनिए। यह पद आप विश्वासियों की प्रार्थना में अनेक बार सुनते हैं, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। दाऊद का बल कौन था? प्रभु यीशु। उसका मुक्तिदाता कौन था? प्रभु यीशु। वह मेरा भी बल और मुक्तिदाता है। वह परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा यह सब है। यह भजन कैसा अद्भुत है। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन 19 समाप्त होता है और अब हम भजन 20 से देखेंगे, जिसका विषय है मसीह की सफलता के लिए इसराइल की विनती। यह भजन मसीही संबंधित भजनों की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु मैंने इसे यह शीर्षक इसलिए दिया है कि यह भजन मसीह और उसके मुक्ति कार्य की भविष्यवाणी है। मेरे विचार में यह भजन अग्रिम दो भजनों से निकट संबंध रखता है। इसराइल में यह भजन आराधना विधि में एक साथ गाए जाते थे। कुछ विचारकों का मत है कि इन भजनों का उच्चारण लेवी आराधना के अगुए करते थे और आराधक प्रतिक्रिया में दोहराते थे। इस भजन के विषय में बिशप हॉर्न ने कहा, कलीसिया मसीही राज्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है जो युद्ध में जा रहा है, उसका विजेता और मुक्तिदाता कि वह पिता परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाए और उसकी इच्छा पूरी हो। यदि बिशप हॉर्न कलीसिया के स्थान पर बचे हुए इसराइली कहते तो शीर्ष प्रहार होता। यह भजन वास्तव में इसराइल का भजन है, परमेश्वर के अनुग्रह का यह एक और भजन है। तो मेरे मित्रों, आइए हम भजन संहिता 20 उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। ध्यान दीजिए, संकट के दिन, इस समय हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी आवाज सुने, है या नहीं? जी हाँ, मैं भी ऐसा चाहता हूँ। यह दाऊद का भजन है, वृद्ध याकूब का नाम इसमें कैसे आया? परमेश्वर के अनुग्रह से। याकूब का परमेश्वर कहलाने में परमेश्वर कभी नहीं लजाता था। मैं तो याकूब के कामों के कारण निश्चय ही उससे लजाता, शायद आप भी उससे लजाते, परंतु परमेश्वर नहीं लजाता था। परमेश्वर ने अनुग्रह से याकूब को बचाया। भजन संहिता 20 उसके 2 पद में लिखा है, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। जी हाँ, वह किस पवित्र स्थान की चर्चा कर रहा है? कलीसिया की? जी नहीं, यरूशलेम के मंदिर का पवित्र स्थान। सियोन कहाँ है? यह कलीसिया नहीं है। दाऊद इसराइल के सियोन की चर्चा कर रहा है, इससे अधिक स्पष्ट और क्या हो सकता है? भजन संहिता 20 उसके 3 पद में लिखा है, वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। डॉक्टर गबलिन का अनुवाद इस प्रकार से है, वह तेरे सब बलियों को स्मरण रखेगा और तेरी होम बलि को स्वीकार करेगा। ध्यान दें कि वह हमारी बलि के बारे में नहीं कह रहा है, वह प्रभु यीशु की बलि की चर्चा कर रहा है। उसने देह धारण के समय प्रार्थना और आंसू बहाए। इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय में हम इसे पाते हैं। प्रार्थना और आंसू ही नहीं चढ़ाए वरन अपने देह ही अर्पित कर दी। हम देखते हैं सेला, आपके लिए विचार करने हेतु बात इन दिनों जब परेशानियां बहुत अधिक हैं। भजन संहिता 20 उसके 4-6 पद में लिखा हुआ है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की प्रार्थना सुनेगा। स्मरण रखें कि उसने कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 41 और 42 पद में, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। संभवतः प्रभु यीशु ही एकमात्र है जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सदा सुनता है और उत्तर देता है। तब हम आगे आते हैं भजन संहिता 20 उसके 7-9 पद में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। मेरे मित्रों, वह इसराइल का राजा है, हमारा तो वह उद्धार करता है, और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, यहोवा बचा ले। इब्रानी में इसे होशाना लिखा है। यह भजन एक महान होशाना का भजन है। परमेश्वर इसे हमारे मन में सत्यापित करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। आप इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें, उसके आशीषों को प्राप्त करते रहें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
सच बतला दे तेरे मन में, रात ये कैसी छाई। सच बतला दे तेरे मन में, रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खो खोया है जा जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले।